पृष्ठ संख्या 80, अध्याय 7, काल लेखन निकास लेखन। पुराने जमाने में भारतीय संगीत की शिक्षा केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रदान की जाती थी और आज भी कुछ हद तक वही प्रथा प्रचलित है। यह शिक्षा मुख्यतः मौखिक रूप में दी जाती है। गुरु के द्वारा शिष्य को सिखाना, दिखाना, उससे रियाज कराना, उसका मार्गदर्शन करना आदि सब कार्य आदर्श रूप में मगर प्रत्यक्ष पद्धति से संपन्न होता आया है। किंचित मात्रा में संगीत के राग, उनका स्वरूप, उनकी बंदिशें लिखी आवश्यक गई हैं, किंतु उनकी सरगम स्वर लेखन और काल लेखन अत्यल्प मात्रा में हुआ है। इस संदर्भ में पंडित भातखंडे जी ने ऐतिहासिक स्वरूप का अनमोल कार्य किया है। इसी ढंग का कार्य आगे चलकर संगीत के महान कलाकार पंडित वी आर देवधर और पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित रातन जनकर जी ने मिलकर किया। उन्होंने रचनाओं का काल लेखन किया है, परंतु संगीत का सुगम काल मापन करने वाले पखावज एवं तबला वाद्यों की न तो रचनाएं लिखी गई हैं, न उनका काल लेखन ही किया गया है। घरानेदार रचनाओं का पुस्तक के स्वरूप में परिचय करा देने का महान कार्य प्रथमतः पंडित अरविंद मूलगांवकर जी ने अपनी तबला शीर्षक पुस्तक में किया है, किंतु उन्होंने भी उक्त रचनाओं का काल लेखन नहीं किया। फलतः अगर वे रचनाएं महत्वपूर्ण और बजाने लायक हों तो भी नौसिखुए आदमी के लिए उनको समझना कठिन होगा। इस संदर्भ में पंडित नारायण जोशी ने अपनी आदिताल पुस्तक में उस्ताद थिरकवा साहब की कुछ चुनी हुई रचनाओं के निकास के लिए एक अभिनव लेखन पद्धति की निर्मिति की है, जो प्रशंसनीय है। उक्त पुस्तक में उन्होंने निकास दर्शाया तो है, किंतु सुगम काल लेखन नहीं किया है। काल मापन लेखन का उद्देश्य। स्थापत्य विशारद पहले इमारत का नक्शा तैयार करता है और उसके सहारे इमारत सही तरीके से बांधी जाए इसका नियंत्रण नक्शा किया करता है। संगीत की रचनाओं के बारे में भी हम कह सकते हैं कि बंदिश विशेष लय या जाति में बांधी हुई होती है और उसका नियंत्रण मुख्यतः ताल क्रिया करता है। रचनाकार उस बंदिश को कैसे गाया या बजाया जाए सो गाकर या बजाकर दर्शाता है। उक्त बंदिश में कुछ स्थानों पर विराम होता है, कुछ शब्द एक गुना में होते हैं तो कुछ दोगुन में। सम, ताली या खाली बंदिश के किन अक्षरों पर आती है यह रचनाकार द्वारा तय किया रहता है। पृष्ठ संख्या 81। और तदनुसार वह अपनी रचना प्रस्तुत करता है। गाने की बंदिश में ताल लय के ये सूक्ष्म भाव और स्वर, राग आदि सब बारीकियां निश्चित की रहती हैं और उन्हें वैसा ही गाया जाए इसके प्रति रचनाकार बराबर जागरूक रहता है, तथा वह रचना तालीम के जरिए वह अपने शिष्यों को सिखाया करता है। कई बार स्मरण शक्ति धोखा दे सकती है अथवा कलाकार रचना की प्रकृति को ठीक तरह से समझे बिना ही अपने ही विचार से उसे प्रस्तुत किया करता है, फलतः रचना का स्वरूप बदल जाता है। ऐसा न होने पाए इसलिए काल लेखन स्वर लेखन पद्धति की निर्मिति हुई। पाश्चात्य देश में कोई भी रचना पढ़कर ही प्रस्तुत की जाती है। यह निर्विवाद है कि केवल अत्यंत प्रगत स्वरकाल लेखन पद्धति के कारण 50 से 100 कलाकारों तक का वाद्यवृंद एक ही रचना को प्रस्तुत कर सकता है, किंतु हम हैं कि जो इस पद्धति का अवलंब न करके मौखिक परंपरा से ही संगीत सीखते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं। खैर, स्वर काल लेखन के जरिए रचना लिखने के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, बंधी हुई रचना का स्वरूप विकृत न हो। दूसरा, स्मरण शक्ति धोखा न दे पाए। तीसरा, अगली पीढ़ियों को बंदिशों का धन उपलब्ध हो। चौथा, रचना को हम हमेशा कान से ही सुनते आए हैं, लेकिन स्वर काल लेखन का उद्देश्य यह है कि रचना को आंखों से देखकर पढ़कर उसका सम्यक आकलन सुलभ हो। पांचवा, गुरु की मदद लिए बिना ही कलाकार नवीन रचना को पढ़कर उस पर चिंतन करके उसे प्रस्तुत कर सके। अर्थात विद्यार्थी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसी लिखित रचना गायन के जरिए प्रस्तुत की जाने वाली रचना की हूबहू प्रकृति नहीं हो सकती। इसलिए उसे रचना को केवल पढ़कर उसे प्रस्तुत करने का साहस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि वह रचना गुरु के द्वारा अच्छी तरह मालूम करके उसे सीख ले, उसे उनसे सुन ले, साथ ही लिखित रचना को भी दृष्टि सम्मुख रख ले। इस प्रकार के तालीम वजा रियाज से रचना को उचित ढंग से पढ़ने का उसका अंदाज और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। काल मापन लेखन की परंपरा का इतिहास। अब हम भारतीय संगीत में प्रस्तुतः प्रमुखतः उत्तर भारतीय संगीत में प्राचीन काल से लेकर उपयोग में लाई गई कुछ काल लेखन पद्धतियों का संक्षेप में जायजा लें। पृष्ठ संख्या 82। अति प्राचीन गायन पद्धति है साम गायन, सामवेद गायन। इसमें ह्रस्व दीर्घ अक्षरों के उच्चारण के लिए हाथ और गर्दन को विशिष्ट पद्धति से हिलाकर मार्गदर्शन किया जाता है। गत हजार वर्षों से इसी पद्धति से गायन पठन हो रहा है। यह पद्धति अत्यंत पक्की है और उसकी शिक्षा गुरु शिष्य पद्धति से मौखिक रूप में अत्यंत कड़ाई के साथ दी जाती है। परिणामतः वेद गायन में जरा सा भी फर्क नहीं आया, न ही उसमें कोई दोष या विकृति आ पाई, बल्कि इस विशिष्ट पद्धति से रचना की शुद्धता को सुरक्षित रखने में मदद ही पहुंची है। इन क्रियाओं को आगे चलकर विकसित हुई काल लेखन पद्धति की गंगोत्री ही मानना चाहिए, क्योंकि यही क्रियाएं आगे चलकर विकसित हुई और स्थूल काल से लेकर सूक्ष्म काल तक का लेखन किया जा सके ऐसे चिन्ह निर्माण हुए। भरत के नाट्य शास्त्र ग्रंथ में काल दर्शन के लिए विशिष्ट हस्त विक्षेपों के नियम दिए गए, जिन्हें क्रिया कहा गया है। ये क्रियाएं दो प्रकार की हैं, सशब्द क्रिया और निःशब्द क्रिया। इन क्रियाओं का इस्तेमाल ताल व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इनकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत ग्रंथ के प्राचीन ताल और उनके 10 प्राण की संकल्पना शीर्षक अध्याय में दी गई है। उपर्युक्त काल दर्शक क्रियाएं हस्त विक्षेप के रूप में होने से उसका लाभ मौखिक शिक्षा एवं गायन वादन के प्रस्तुतिकरण में हुआ करता था। इसे काल लेखन पद्धति की नींव ही मानना चाहिए। सर्वप्रथम काल लेखन के उस जमाने के प्रचलित कुछ चिन्ह इस प्रकार हैं। द्रुत का चिन्ह 0, जिसकी मात्रा 1/2, लघु का चिन्ह 1/2, जिसकी मात्रा 1 मात्रा, गुरु का चिन्ह एस, जिसकी मात्रा 2 मात्राएं, प्लुत, जिसका चिन्ह एस के ऊपर 1 डैश, जिसकी मात्रा 3 है, काकपद, जिसका चिन्ह प्लस और मात्राएं 4 हैं। ये चिन्ह निश्चय ही रचना को ठीक ढंग से लिखने एवं पढ़ने के उद्देश्य से निर्मित किए गए होंगे। संक्षेप में, काल लेखन के 13वीं शती में प्रचलित होने का यह प्रमाण है। प्राचीन काल में 2 प्रकार के ताल प्रचलित थे, पहला मार्गी ताल एवं दूसरा देशी ताल। उस जमाने में काल लेखन विषयक विचार पर्याप्त प्रगत थे। ऊपर दर्शाए गए काल मूल्य चिन्हों के साथ ही विराम चिन्हों का मूल्य भी निश्चित किया गया था, पृष्ठ संख्या 83, और उस विराम काल को विराम पूर्ण चिन्ह काल के 1/2 इतना माना जाता था, तथा उसका चिन्ह था सी। उदाहरणार्थ, लघु के ऊपर अगर विराम चिन्ह हो तो काल 1.5 मात्रा का होगा, जैसे लघु और विराम 1/2 और द्रुत और विराम 3/4। संगीत शास्त्र की लय 3 प्रकार की हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। इन तीनों लयों के निश्चित काल एकक कौन से हैं, इनके बारे में शास्त्रकारों ने कुछ भी नहीं कहा है। उदाहरण के लिए, विलंबित यानी कितना काल, इसका सर्वमान्य परिमाण नहीं दिया गया है। हर कलाकार की विलंबित लय अलग अलग हो सकती है, किंतु उसके लिए कोई निश्चित परिमाण नहीं दिया गया है, किंतु उसके लिए किसी निश्चित परिमाण की आवश्यकता कुछ शास्त्रकारों ने महसूस की थी। संगीत प्रकाश ग्रंथ में लेखक पंडित सुखदेव नारायण सिन्हा ने द्रुत, लघु, गुरु आदि मात्राओं के नाते में और इन मात्राओं को चिन्हों से दर्शाए गए सेकंडों के रूप में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। उनकी राय में काल लेखन का काल सर्वमान्य काल होना चाहिए। वे अपनी किताब में लिखते हैं, 2 अणु = 1 द्रुत = 1/2 मात्रा = 5/8 सेकंड, 2 द्रुत = 1 लघु = 1 मात्रा = 1/4 सेकंड, 2 लघु = 1 गुरु = 2 मात्राएं = 2/2 सेकंड, 3 लघु = 1 प्लुत = 3 मात्राएं = 3/4 सेकंड, 4 लघु = 1 काकपद = 4 मात्राएं = 5 सेकंड, 1 अणु द्रुत = 2 कला = 1/4 मात्रा = 5/16 सेकंड, 1 विराम द्रुत = 2 कला = 3/4 मात्रा = 15/16 सेकंड। 1/4 सेकंडों का मात्रा काल यानी पुनः क्लिष्ट कल्पना हो गई, किंतु इससे यह भी अर्थ निकलता है कि संगीत के प्रस्तुतिकरण में लघु गुरु का अक्षर काल निश्चित स्वरूप का हुआ होगा और संभवतः उसे छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसे जब सेकेंड के स्वरूप में व्यक्त करना तय हुआ तब प्रतीत हुआ कि 1 मात्रा काल का 1/4 सेकंड होता है। 1 सेकंड का काल काल लंबाई के स्वरूप में 1 मात्रा काल की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। लघु, गुरु, मात्रा, सेकंड का नाता दर्शाने का प्रयत्न पंडित सुखदेव नारायण सिन्हा ने काल की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, पृष्ठ संख्या 84। लघु गुरु मात्रा सेकेंड का नाता दर्शाने का प्रयत्न पंडित सुखदेव नारायण सिन्हा ने अपनी पुस्तक में किया हो तो भी उस विचार का विकास या रचना वाचन के लिए उसका उपयोग आगे चलकर किसी ने किया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अब हम ताल और लय की संकल्पनाओं के लेखन के बारे में जो विचार किया गया है उसकी जांच करें। संगीत विषय के ग्रंथकारों ने लय के तीन प्रकार दर्शाने के लिए किसी भी चिन्ह को नहीं चुना है, इसीलिए एकाध रचना पढ़ते समय उसकी लय कौन सी है समझ में नहीं आता, उसके लिए मौखिक मार्गदर्शन काम आता है। हमने इस तरह देखा है कि ताल निम्नलिखित बातों से व्यक्त होता है। पहला है कुल मात्रा संख्या, दूसरा उन मात्राओं का विविध खंडों में हुआ विभाजन, तीसरा ताली और काल, चौथा है सम। ताल को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ विद्वानों ने चिन्हों का उपयोग किया है, जिन्हें खंडों की मात्रा संख्या दर्शाने के लिए निर्माण किया गया है। उदाहरण के लिए खंड की मात्रा संख्या और चिन्ह, एक का चिन्ह गुणे का चिन्ह है, दो बराबर एक, तीन बराबर W, चार बराबर V। खाली क्रिया दर्शाने के लिए किसी भी चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है। इन चिन्हों के सहारे आठ मात्राओं का तीन ताल IVI चिन्हों से दिखाया जाएगा। झप ताल IXIIXI, एक ताल VVII। इस पद्धति से ताल के स्वरूप को चिन्हों से व्यक्त करना एक अच्छी कल्पना है, किंतु इस प्रकार से अगर ताल व्यक्त करना हो तो उन चिन्हों को थोड़ा सा बढ़ाकर काल संज्ञा दर्शाने के लिए भी एक अलग चिन्ह का उपयोग किया जाए तो ठेके की मदद के बिना निम्नांकित सुधारित चिन्हों की मदद से ताल का रूप अत्यंत अस्पष्टता के साथ हम आंखों से देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 85, खंड की मात्रा संख्या एवं चिन्ह। एक का चिन्ह X, दो का चिन्ह I, तीन का चिन्ह W, चार का चिन्ह V और पांच का चिन्ह VI, काल का चिन्ह। इन चिन्हों की मदद से विविध ताल इस प्रकार दिखाए जा सकते हैं। तीन ताल VVVV, झप ताल IWIW, रूपक WII, एक ताल IIIIIII। यहाँ एक बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि हस्त क्रियाओं में आज जिस पद्धति से काल दर्शाया जाता है वैसी क्रिया प्राचीन काल में भी प्रचलित थी, अर्थात उस समय खाली कल्पना ही अस्तित्व में न होने से केवल काल दर्शाने के लिए अलग चिन्हों की आवश्यकता संभवतः महसूस न हुई हो, किंतु आज तो ताल संकल्पना प्रचलित है, उसमें खाली का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में विकसित हुआ होने से पुराने चिन्हों की सहायता से आज के ताल स्वरूप को प्रस्तुत करने की अपेक्षा सुधारित चिन्हों की मदद से उसे प्रस्तुत करना अधिक इष्ट होगा। लय और लयकारी का लेखन। विलंबित द्रुत और मध्य लय को दर्शाने के लिए कोई भी चिन्ह निर्धारित नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये तीनों लय परस्पर सापेक्ष हैं। किसी कलाकार द्वारा प्रथमतः प्रस्तुत की जाने वाली लय को अगर मध्य लय मान लिया जाए तो उसकी दुगुन लय द्रुत होगी और उसकी आधी लय विलंबित होगी। यहाँ एक बात विचारणीय है कि मध्य लय के रूप में मानी गई यह लय आधे सेकेंड काल जितनी होती है, अतः अगर एक सेकेंड काल विलंबित लय का निदर्शन हो तो एक सेकेंड में चार मात्राओं वाली लय को द्रुत लय माना जा सकता है, किंतु संगीत के व्यवहार में विलंबित लय का सेकेंड से नाता जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ विलंबित लय को व्यक्ति सापेक्ष स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। उस्ताद अमीर खां साहब की विलंबित लय और आगरा घराने की विलंबित लय दोनों में फर्क होने की संभावना है, और हमारे लिए यह तय करना असंभव है कि कौन सी लय असल में विलंबित है। पृष्ठ संख्या 86। जानकारी कुछ उदाहरणों की मदद से हम प्राप्त कर लें, जैसे त्रिताल का ठेका आड़ ड्योढ़ी लय में लिखना। इसके लिए हमें दो मात्राओं के काल में तीन मात्राओं का समावेश करना आना चाहिए, और उस सूत्र के अनुसार हमें त्रिताल में ड्योढ़ी में लेखन करना चाहिए। उद्देश्य है दो मात्राओं में तीन मात्राओं को समाविष्ट करना। सीढ़ी क्रम, हर मात्रा के तीन समान भाग करना और लिखना। सीढ़ी क्रम दो, नए सिरे से किए गए प्रत्येक दो भागों को एक मात्रा काल समझना। और सीढ़ी क्रम थ्री, इस पद्धति से मात्राओं की संख्या को क्रम से लिखते जाना। उदाहरण के लिए दो मात्राओं में तीन मात्रा करना। सीढ़ी क्रम एक, एक और दो बराबर एक दो तीन, एक दो तीन। सीढ़ी क्रम दो, एक अवग्रह दो अवग्रह तीन अवग्रह। इस पद्धति से हमने दो मात्राओं की तीन मात्राएं बनाई। उदाहरण के लिए अब इसी तंत्र को तीन ताल के लिए प्रस्तुत करके त्रिताल के डेढ़ गुना ड्योढ़ी लय कैसी लिखी जाए टीचर से सीखें।